खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सो आए हम सब खुदावंद खुदा के हजूर झुकें और आज की सुबह के लिए उस खुदावंद से अपनी तरबियत, नसीहत और हौसला फजाई के लिए उसके कलाम में से जिंदगी की रोटी चाहेंगे। सो आए हम सब दुआ करें। खुदा बाप, बड़ी हलीमी के साथ तेरे हजूर आते हैं क्योंकि तूने कहा कि जिसमें हिकमत की कमी हो वो मुझसे मांगे, मैं उसे बगैर झिड़के मलामत किए दूंगा। और खुदा बाप, तू ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और फरोतनी और बड़े हलीमी के साथ तेरे पास आए ताकि तू अपना करम और रहम उन पर करे। सो आई हुई तमाम बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ। और जो नहीं आए खुदावंद उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो बेदार हो ताकि इस बेदीन ज़माना में तुझ खुदावंद खुदा पर खुदा खुदा अपनी नज़रें टिकाए जिसने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सब तेरे अजीम नाम को अपनी ज़िंदगी में याद रखें। उसी के मुकद्दस नाम में खुदा बाप ये दुआ मांगते हैं जो तेरा बेटा और हमारा नजात दहिंदा है। आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से ईसियों के नाम पालूस रसूल का खत। आज हम उसकी 20वीं आयत से, जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में कहा कि हम सीखेंगे कि ये कोने के सिरे का पत्थर कौन है और क्यों यीशु मसीह को कोने के सिरे का पत्थर कहा गया है। पिछले दिनों में हमने सीखा कि नबियों की बुनियाद और नींव क्या थी, यानी कि उनका पैगाम क्या था। आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह को क्यों कोने के सिरे का पत्थर कहा गया है। सो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों 2 बाप उसकी 19वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा 22वीं आयत तक। और यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है, पस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसु है, तमीर किए गए हो। उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जो हमने पिछले दिनों में बात सीखी जानी के रसूलों और नबियों की नींव क्या थी। रसूल वो थे जिन्होंने यीशु मसीह से पैगाम हासिल किया। और यहाँ पर उन 12 रसूलों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया और पूरी दुनिया में उसके पैगाम को फैलाया। और नबियों से मुराद वो जिन्होंने खुदावंद का पैगाम, खुदावंद की सच्चाई और वो भेद बने इंसान पर जाहिर किए। और न्यू हमने देखी थी कि यानी कि वो बुनियाद, ये बुनियाद कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। मेरे साथ एक हवाला निकालें नए अहदनामा से, 1 करंथियों उसका 3 बाप। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को बड़े वाजिया तौर पर कर देता है कि तमाम तमाम वो नौजवान, तमाम वो ईमानदार जो उस दौर में और आज के दौर में, वो हम सबको किस बात से, किस नाम से और किस तरह जाहिर करता है बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल, काम करने वालों की सूरत में, खुदा के खादमों की सूरत में, खुदा के लिए काम करने वाले लोग, यीशु मसीह की गवाही देने वाले लोग, यीशु मसीह के एलची, यीशु मसीह के नुमाइंदे, यानी कि किसी की नुमाइंदगी करने वाले, जैसे इलेक्शनों में बहुत दफा होता है कोई किसी की नुमाइंदगी करने के लिए आता है, वैसे ही हम इस जमीन पर क्या हैं? यीशु मसीह की नुमाइंदगी करने वाले और यीशु मसीह के इस खेत में जिसे दुनिया कहा गया है काम करने वाले हैं। तो पालूस कहता है, क्लीसिया जब हम पहला ग्रंथियों का खत देखते हैं तो उस दौर में पालूस जब जो कि खुदा का पालूस रसूल था, तो वो जब तालीम देता था तो उसके पीछे यानी कि जब वो तालीम देकर जाता था तो लोग झूठे रसूल आते थे जो कहते थे कि पालूस गलत तालीम देता है। और बहुत दफ़ा क्या होता है, बहुत दफ़ा ये मसला था उस कलीसिया में कि जो खादम खिदमत करते थे उनमें आपस में बहुत दफ़ा क्या पाया जाता था, लड़ाई झगड़ा पाया जाता था। वैसे ही जैसे हमारी कलीसियाओं में होता है, पादरी पादरी से खुश नहीं, बहुत दफ़ा एक पादरी को ज़्यादा लोग प्यार करते हैं और दूसरे पादरी को कबूल नहीं करते। सो पहला करिन्थियों 3 बाप में हम देखते हैं यही मसला है, और ये कब होता है, जब इंसान, जब कलीसिया रूहानी तौर पर क्या होती है, कमज़ोर होती है, जब ईमानदार रूहानी तौर पर बच्चों की तरह सोचते हैं। तो पालूस रसूल यहाँ पर उनमें जो लड़ाई झगड़ा था, उनमें जो हसद था, उनमें जो जिस्मानी और दुनियावी बातें थी, उन सारे मसले को हल करते हुए, बातचीत करते हुए कहता है। जब हम 6 आयत को देखते हैं, मेरे साथ इस पूरे हवाले को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पालूस कहता है 1 आयत में, ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस कलाम, मैंने, पालूस रसूल बात करते हुए कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। कलीसिया को वो कहता है कि मैंने तुम्हें सख्त गुजार नहीं दी, क्योंकि मैंने तुमको रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानियों के तौर पर बच्चे मसीह में समझ कर ये बातें की हैं। और कहता है दूसरी आयत में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सादा सी बात, जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, कम से कम 2 साल का या 30 साल का, तो हम उसे कोई ठोस गज़ा नहीं दे सकते, यानी कि उसे बकरे का या कोई और गोश्त खाने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो गोश्त देंगे तो उसको हजम नहीं होगा बल्कि उसका पेट खराब हो जाएगा। पालूस भी यही कहता है कि मैंने तुमको दूध पिलाया क्योंकि तुम दूध के काबिल थे, और खाने के लिए और शय ना दी, सख्त गजा ना दी, क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तीसरी आयत में कहता है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, यानी कि दुनियावी लोगों की तरह सोचते थे, कलीसिया जिस्मानी तौर तो दुनियावी लोगों की तरह सोचते थे, और दुनियावी सोच क्या है, हसद, लड़ाई, झगड़ा, अपने आप को ऊंचा करना, अपने आप को इज्जत देना, दूसरों को कमतर जानना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के साथ खुशी से ना मिलना, मसीह के हुक्मों पर नहीं चलना बल्कि इंसानी रीति रिवाज में चलना। तो जिस्मानी तौर पर बहुत सी बातें बाइबल मुकद्दस बताती हैं, उनमें से चंद एक मैंने आपको बताई हैं। इसलिए कि जब तुमने हसद, ये जिस्मानी होने का फल है, हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए? आपको याद होगा कि जिस्म के फल क्या हैं, लड़ाई, झगड़ा, हसद, तफरके, जादूगरी, बुत परस्ती, हर तरह की गंदी बातें। लेकिन रूह का फल क्या है, जिस्मानी या रूहानी फल क्या है, मोहब्बत, हसद नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मोहब्बत, सुलह। तो पालूस कहता है, और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले, यानी कि इंसानी तरीकों पर ना चले, इंसानी तरीका कार, इंसानी तौर पर सोच, इंसानी लोग जो कि जिस्मानी लोग हैं उनका तरीका तौर और उनके जैसा रवैया, जैसे आप बहुत दफ़ा देख सकते हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो एक दूसरे पर रहम करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस्मानी लोग वो रहम नहीं करेंगे। हाँ, मसीही हैं, वो अपना भला ढूंढेंगे, और आप इस बात को अपनी कलीसिया में, इस माहौल में देख सकते हैं कि लोग अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, इंसानी तरीका कार पर चलते हैं। और 4 आयत में पालूस कहता है, जो और बात उनको मसला थी वो ये थी, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पालूस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपलूस का हूँ, पालूस और उसके साथ अपलूस था, जो कि दोनों ही मसीह की खिदमत करते थे। लेकिन कलीसिया में क्या था, झगड़ा था कि जी मैं पालूस से तालीम पाई है, इसलिए मैं पालूस ही की बात मानूंगा और दूसरे को किसी को अहमियत नहीं दूंगा। और दूसरा कहता है, अपलूस का हूं तो क्या तुम इंसान ना हुए, यानी कि जिस्मानी तौर पर सोचने वाले ना हुए। फिर पांचवी आयत में कहता है, अपलूस क्या चीज है। पालूस रसूल उनको बताता है कि अपलूस जो उस वक्त खादम था वो क्या चीज है, कुछ भी नहीं, और पालूस क्या है, कुछ भी नहीं। तो पालूस इस झगड़े को खत्म करने के लिए, जो उन जिस्मानी ईमानदारों में पाया जाता था कि अपनी अपनी जिससे खुशी की बात मिली उसे कबूल कर लिया, जिसने सख्त कलाम सुना दिया उसे अपना मुंह फेर लिया, जैसे बहुत दफा होता है, बहुत दफा सच्चे तौर पर भी होता है, बहुत दफा लोग फिर जाते हैं खुदा के खादमों से, क्योंकि खुदा के खादम, इसलिए लोग खुदा के खादमों से अपना मुंह फेरते हैं, क्योंकि बहुत दफा खुदा के खादम खादम होने की उस खिदमत को निभाते नहीं। सो पालूस यहां पर कहता है, और पालूस क्या है, खादम, जिसके वसीला से तुम ईमान लाए। कहता कह रहा है कि पालूस और अपलूस दोनों कुछ भी नहीं, सिर्फ वो खादम है, यानी कि खिदमत करने वाले। यहाँ पर जो लफ्ज खादम का इस्तेमाल किया गया है, इसे बाइबल में हम देखते हैं डीकन के तौर पर भी कहा गया है, एल्डर के तौर पर भी कहा गया है, और इसका जो मतलब निकलता है, यानी कि वेटर। वेटर का आपको पता होगा, जब आप कहीं जगह पर खाना खाने जाते हैं तो वो आकर आपकी खिदमत करता है, कहता है आपको पानी चाहिए, क्या करना है, कौन सा खाना खाएंगे। जैसे आप बहुत दफ़ा छोटे छोटे ना कहते हैं कि होटल पर या रेस्टोरेंट पर जाते हैं, तो यहाँ पर वो पालूस अपने आप को कहता है खादम है, जिसके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदा ने उसे बख्शी है। खुदा ने हर एक को उसकी हैसियत, उसकी खिदमत, उसका ओहदा, उसका दर्जा उसे बख्शा है। और छठी आयत में कहता है, मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर खुदा बढ़ाया, पानी दिया मगर बढ़ाया खुदा ने। वो सादा तौर पे इस बात को कहता है कि आपने किसी के वसीला से निजात पाई है, कि यीशु मसीह को पहचाने, किसी दूसरे के वसीला से तालीम पा रहे हैं, लेकिन फल लगाने वाला, बढ़ाने वाला कौन है, खुदावंद खुदा। तो पालूस सादा तौर पर ये कहता है कि मैंने दरख्त लगाया, दरख्त लगाने से मुराद यानी कि तुम मेरे वसीला से मसीह के पास आए, मैं जा रहा हूँ आगे, अब अपलूस के वसीला से पानी। पानी इस बात की तस्वीर है जैसे कि कोई दरख्त लगाता है, दरख्त नए तौर पर पैदा होता है। पानी यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी तरक्की के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो बाइबल की तालीम है। और बढ़ाया किसने, खुदा ने। और सातवीं आयत में पालूस कहता है, पस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। पालूस सादा तौर पर कहता है कि इस झगड़े का हल ये है कि मैं और अपलूस हम खुदा के खादम हैं, जिन्होंने अपना काम किया। खुदा ही है जिसको सारा जलाल मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी ने बढ़ाया। और आठवीं आयत में लिखा है, लगाने वाला और पानी देने वाला, पानी देने वाले दोनों एक ही हैं, लेकिन हर एक अपने ही अपनी ही लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुताबिक पाएगा, हर एक। सो आज आप जो कुछ भी करते हैं खुदा के लिए, अगर आप सुबह को इबादत पर आते हैं तो किसी के लिए नहीं बल्कि खुदा से बरकत पाने के लिए, अगर आप खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के लिए कुछ देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किस लिए है, खुदावंद के लिए। आप सब जो कुछ भी निजात का पैगाम देते हैं, चर्च में सफाई कर देते हैं, चर्च में कुछ हाथ बढ़ा देते हैं, या किसी की मदद करते हैं तो, या किसी को पैगाम देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पालूस रसूल कहता है हर कोई अपने काम की मेहनत का अजर पाएगा। और नामी आयत में कहता है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तो ये पालूस रसूल बात जो करता है दूसरे पर पिपसियों दो बाप उसकी 20वीं आयत में, कुछ को खुदा ने रसूल और कुछ को नबियों की खिदमत दी और वो बुनियाद रखने का वसीला बने। और बुनियाद कौन है? यीशु मसीह। और वो कौन है? सिर्फ काम करने वाले। यहाँ पर पालूस रसूल कहता है कि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती हो और खुदा की अमारत हो। इसलिए यहाँ पर वो कलीसिया से बात कर रहा है कि तुम अमारत हो, खुदा की खेती हो, जिस पर हम काम कर रहे हैं रसूलों के तौर पर, नबियों के तौर पर। और फिर बतयान करता है 10वीं आयत में, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दनाम उमार की तरह नींव रखी। नींव का मतलब बुनियाद रखी। कहता है कि जिस तरह खुदा ने मुझे हिकमत दी, मैंने अपनी हिकमत के मुताबिक जो खुदा ने मुझे फजल से बख्शी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो बुनियाद रखी और दूसरे उस पर इमारत उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे इमारत उठाते हैं मसीह की तालीम को बदलने वाले। आपकी कलीसिया में बहुत से मजीद हैं, मौजूद हैं, पाकिस्तान की कलीसिया में बहुत से मौजूद हैं जो कहते हैं यीशु मसीह की नहीं बल्कि इंसानों की परस्तिश करनी चाहिए, जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने निजात का काम मुकम्मल नहीं किया, इसलिए आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है ताकि निजात हासिल करें। बहुत से हैं जो दूसरी बुनियाद और इमारत उठाने वाले हैं। पालूस रसूल यहाँ पर उस गलत तालीम के बारे में बात करता है। दूसरों से मुराद वो है जो दूसरी इमारत उठाते हैं, गलत तालीम देने वाले, मसीह के फजल और रहम को बदलने वाले। और कहता है 10वीं आयत के दूसरे हिस्सा में, बस हर एक खबरदार रहे वो कैसी इमारत उठाता है। हमें खबरदार रहना चाहिए कि हम कैसी तालीम देते हैं और हम किस तरह काम कर रहे हैं, जिस्मानी कुव्वत में या फिर रूहानी कुव्वत में। क्योंकि आगे चलकर पालूस बयान करेगा कि यीशु मसीह ही वो वाहद बुनियाद है और उस पर कोई दूसरा बुनियाद उठा नहीं सकता, नहीं सकता। तो यही बात पालूस रसूल वहां पर कहता है इफिसियों दो बाप उसकी 20वीं आयत में, रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तुम तामीर किए गए हो। आप दिन ब दिन यहाँ पर इस सुबह की इबादत में तामीर किए जाते हैं, रूहानी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। किस लिए? ताकि आप ये बुनियाद, आप ये तालीम दूसरों को देने वाले बने। पालूस ने इसीलिए यीशु मसीह को नहीं देखा था कि वो यीशु मसीह को मैंने देख लिया, अब कोई बात और काम करने की दौर नहीं, ज़रूरत नहीं। उसने देखा और उसे हुक्म मिला कि जाकर गैर कौमों को मेरे बारे में बताओ। हमें भी यही हुक्म मिला है कि पास जाओ और सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। इसलिए जो कुछ आप करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, और जो कुछ आप करेंगे उसका अजर मिलेगा। इसलिए हर रोज़ अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ करते हैं क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। इसलिए कि इंसानों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए, क्योंकि वही अजर देने वाला है। इसलिए यीशु मसीह के बाइबल मुकद्दस में 100 से ज्यादा नाम है। यहाँ पर यीशु मसीह को कहा गया है कोने के सिरे का पत्थर। हो सकता है कि कल को हम जब 21वीं आयत शुरू करें तो मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के दूसरे बहुत से नाम हैं। इसलिए अगर कोई लिखना चाहता है तो अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मालूमात है जो आपकी आने वाली नस्ल के लिए बरकत का बाज ठहरेगी। इसलिए यीशु मसीह चाहता है, खुदा का कलाम हमें हदायत करता है कि हम ऐसी कलीसिया बने जो रूहानी है, जिस्मानी नहीं, क्योंकि तब ही हम नूर के फर्जंद ठहरेंगे। तब ही लोग उस मोहब्बत, उस इत्तफाक और उस सरगर्मी को देखकर जो शागिर्दों में पाई जाती थी, उनकी ज़िंदगी के वसीला से बहुत सी जिंदगियों ने यीशु मसीह को कबूल किया। इसलिए हर रोज़ हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा बाप हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखा, हमें एक दूसरे को माफ करना सिखा, हमें एक दूसरे पर रहम और तर्स करना सिखा, हमें एक दूसरे के लिए हमदर्दी करने की रूह दे, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की कुव्वत दे, और हमें तेरे राह पर चलने की हिकमत और दनाई दे। इसीलिए आप इस जमीन पर मौजूद हैं, क्योंकि आसमान पर ना तो खुशखबरी सुनानी पड़ेगी, ना ही आसमान पर किसी को किसी पर तर्स करना पड़ेगा, और ना ही वहां पर किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा होगा। जितने लड़ाई झगड़े, जितने फसाद, जितना भी हसद, जितना भी यहाँ पर एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक दूसरे को नीचा करना, वो सब जमीन पर ही है। और यही वो रूहानी जंग है जिसमें हमें यीशु मसीह की अकल को इस्तेमाल करने की जरूरत है। आए हम दुआ करें। खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी अकल के लिए, तेरी दनाई के लिए, तेरी हिकमत के लिए, तेरे फहम के लिए, और तेरे कलाम के लिए, तेरे पाक रूह के लिए। हम सबको आज अपने कलाम पर अमल करने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।